तब तब कर निखरेगा जीवन, तप कर बनते देव महान, तप से मिलता जीवन का सुख, तप से मिलता जीवन दान। तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता, तपस्या से जीवन में आती है मधुरता, तपस्या से जीवन में आती है मधुरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता।
ओम शांति। हम सभी के बीच में आदरणीय राजयोगी राजू भाई जी विराजमान है। आपका लौकिक जन्म उत्तर प्रदेश में कानपुर के पास एक छोटे गांव में और आध्यात्मिक परिवार में हुआ। यही आपको जन्मते से ही आध्यात्मिक परिवार में जन्म प्राप्त हुआ, ये गॉडली गिफ्ट है। और 1960 से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की गतिविधियों को आपके ही लौकिक घर में अपने शुरू हुई तथा बचपन से ही योगी जीवन जीने का संकल्प लिया। आप 1972 में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी बाबा के इस महायज्ञ में समर्पित रूप से विभिन्न डिपार्टमेंट में राजू भाई जी सेवाएं दे रहे थे। 1976 से दादी मनमोहिनी जी के साथ हिंदी मुरली को कंपोज करने तथा ईश्वरीय विद्यार्थियों के पुरुषार्थ को सरल बनाने के लिए सार रूप में वरदान अथवा स्लोगन के रूप में विशेष पॉइंट्स के द्वारा सर्व ब्राह्मण परिवार की आप सेवाएं दे रहे हैं। राजयोगा एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के ग्राम विकास प्रभाग के आप हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं। अव्यक्त बाप दादा के सम्मुख मुरली श्रवण के साथ साथ मुरली को टाइप करके विश्व के कोने कोने तक तत्काल सारे विश्व में पहुंचाने का विशेष योगदान राजू भाई जी का रहता है। दादियों की क्लासेस या मम्मा की विशेषता या 18 जनवरी के निमित्त जो विशेष पुरुषार्थ की बातें आती है वो विशेष राजू भाई जी का विचार सागर मंथन और दादियों की शुभ प्रेरणा से आप सारे ही सेवा केंद्र पर भेजते हैं। आप मुख्यालय पांडव भवन, ज्ञान सरोवर तथा शांतिवन के फोटोकॉपी डिपार्टमेंट के हेड भी हैं। दादी जानकी जी के द्वारा मुख्यालय से जो समय प्रति समय हम सभी को पत्र पुष्प निकलते हैं, जिसमें अव्यक्त इशारे, परमात्म प्रेरणाएं, दादी जी की प्रेरणाएं और देश विदेश में चल रही सेवाओं का समाचार आप ही प्रकाशित करते हैं। ब्राह्मणों की भट्टियां और विशेष रूप से देश विदेश में भी आप बाबा की सेवा अर्थ चक्र लगाते रहते हैं। तो आज हमें राजू भाई जी के अनुभव युक्त गहन अनुभूति के लिए हम आज के विषय को ले रहे हैं। आत्मशुद्धि का आधार है गहन तपस्या, और आप है ही तपस्वी मूर्त, ऐसे राजयोगी तपस्वी मूर्त राजू भाई जी आपका कलकत्ता बांगुर में और मधुबन के प्रांगण में एक हाथ की ताली से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ओम शांति राजू भाई।
ओम शांति। बाबा की इस तपस्या भूमि में आप सबको तपस्या का बहुत सुंदर गोल्डन चांस मिला है, जहां स्वयं सृष्टि के आदि पिता, आदि देव प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती, दादियां दीदियां तपस्या करके अपने आप को संपन्न और संपूर्ण बनाकर नए विश्व के कल्याण की सेवा के लिए एडवांस पार्टी में गई, ऐसी तपस्या भूमि जहां के कण कण में तपस्या के वाइब्रेशन है, यहां आते ही चारों धाम की यात्रा करते ही बाबा के सब चरित्र साकार होने लगते हैं। ये जो प्रांगण है बाबा की कुटिया से शांति स्तंभ तक, आप सभी अमृत वेले ब्रह्म मुहूर्त में यहां सैर करके देखना, बहुत शक्तिशाली चुंबकीय वातावरण है। ऐसे लगता है कि जैसे कोई इतने वर्षों की तपस्या का इस भूमि में आकर्षण है, चुंबक है, और उस चुंबक के आधार से कोई भी अनजान व्यक्ति भी यहां आता है तो उसको इस भूमि के बहुत सुंदर अनुभव होने लगते हैं, महसूस करता है कि यहां पर कुछ अलौकिक शक्तियां हैं। एक दिन ये जो ऑफिस बना हुआ है निर्भय भाई जी का ऑफिस, ये दो तीन ऑफिस जो यहां देखते हैं आप, यहां पहले पहाड़ियां थी और इन पहाड़ियों पर, छोटी छोटी पहाड़ियों पर बाबा खड़े हो जाते थे और सवेरे सवेरे 4 बजे सभी दादियां बड़े भाई जो भी यहां रहते थे बाबा को घेर लेते थे चारों तरफ से, और बाबा बहुत देर तक सकाश देते थे, शक्तिशाली तपस्या कराते थे, दृष्टि देते थे। एक दिन मैं उस थले पर वहां बैठा था, 5-6 भाई ऐसे ही बैठ करके साइलेंस में योग कर रहे थे और दादी जी भोजन करके चक्कर लगा रहे थे, यहां से ही गेट तक जाती थी, फिर आती थी, फिर जाती थी, तो अचानक खड़ी हो गई हम लोगों के पास, पूछने लगी, आप लोगों को ये स्थान आकर्षण क्यों करता है, मैं देखती हूं रोज यहीं आके बैठ जाते हो। ना मुझे पता नहीं है लेकिन बहुत अच्छा लगता है। तो दादी ने फिर कहानी सुनाई कि हम लोगों ने यहां पर बहुत योग किया, बहुत तपस्या की है, ये बहुत शक्तिशाली स्थान है, जहां पर आते ही योग लग जाता है, इसलिए सबको आकर्षण होती है, पांडव भवन में जाएं, मधुबन में जाएं। तो इस भूमि पर जो तपस्या के वाइब्रेशन हैं, हम यहां जब आते हैं रहते हैं तो कोई भी प्रकार की योग में मेहनत नहीं लगती है, सहज योगी बन गए हैं ना सभी। लेकिन जब गहन तपस्या की बात आती है और आत्म शुद्धि की बात आती है, दो चीजें हैं आज के विषय में। आत्म शुद्धि के लिए भक्ति मार्ग के अंदर बहुत से साधन अपनाए गए लेकिन आत्मा को अशुद्ध माना ही नहीं किसी ने, वो तो समझते थे आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा और परमात्मा दोनों निर्लेप हैं, इसलिए शरीर को स्नान कराते रहे, शरीर को शुद्ध करते रहे। बाबा ने हम सबको अपनी पहचान दी और पहचान देने के साथ साथ अनुभव करा दिया कि जितनी अशुद्धता आई है उसका मूल कारण देह अभिमान है, जितने विकार प्रवेश हुए द्वापर युग से उनका मूल है देहाभिमान, बॉडी कॉन्शियस। जब तक इस बॉडी कॉन्शियस का त्याग नहीं किया है तब तक आत्म अभिमानी स्थिति की तपस्या नहीं हो सकती। तो अशुद्धि कहाँ कहाँ है, किस किस रूप में है, जब हम एकांत वास करते हैं, एकांत की भट्टियां मिलती हैं, या एकांत में हम कहीं बैठते हैं जाते हैं, आपको एकांत का कोई स्थान मिल जाए, अकेले हों, और उस स्थान पर आपको कहा जाए कि यहां योग करो, यहां तपस्या करो, तो आप अपने गति को, मन की गति को, अंदर की स्थिति को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अगर लक्ष्य मजबूत नहीं है तो कई प्रकार की अशुद्धियां एकांत के समय इमर्ज हो जाती हैं। वो विकार सताने लगते हैं, परेशान करने लगते हैं, छिपे हुए संस्कार बाहर आने लगते हैं। इसलिए बाबा भी हम बच्चों को ये विधि बताते हैं कि ऐसे जब एकांत शांत वातावरण में बैठते हो तो अपने मन के संकल्पों की गति को चेक करो, उठने वाले विचारों की तरंगों को चेक करो। एकांत कोई स्थान की या व्यक्तियों से किनारा करने वाली नहीं है, लेकिन एकांत का वास्तविक अर्थ है एक के अंत में चले जाओ। बाबा जो है जैसा है और मैं आत्मा जो हूं जैसी हूं, बाबा इवर प्योर है, रियल गोल्ड है, और बाबा के समान मुझ आत्मा को भी बनना है। तराजू के दो पलड़े हैं, एक तरफ आत्मा जो इतने जन्मों से शरीर के साथ रहते रहते अनेक कर्म विकर्म करते करते अपनी तमो प्रधान स्टेज पर आकर पहुंची है, और एक तरफ एकदम प्योर परम पवित्र शिव बाबा, वो अपने समान बच्चों को बनाना चाहता है कि ये बच्चे जिस तरह से इस सृष्टि मंच पर अवतरित हुए थे, कैसे आए थे, जब हमारा पहला जन्म हुआ बाबा ने हम सबको सतयुग से लेकर के कलयुग अंत तक के आदि मध्य अंत की पूरी ही कहानी सुनाई है, और यहां तक भी हम सब ने सुना और जानते हैं। बाबा बताते हैं कि जब श्री कृष्ण का जन्म होता है तो चारों तरफ से लाइट हो जाती है और वो आत्मा अपने योग बल से, पवित्रता के बल से अवतरित हो जाती है, मां को भी साक्षात्कार होने लगता है, कोई शक्ति प्रवेश कर रही है। तो वो जब श्री कृष्ण के साथ साथ हम सब देव आत्माएं इस सृष्टि मंच पर अवतरित हुई, कोई हिसाब किताब नहीं थी, कोई भी प्रकार की इम्प्यूरिटी नहीं थी, कहीं भी लगाव झुकाव प्रभाव नहीं था, आत्मा का अपना योग बल, पवित्रता का बल, और वो इस सृष्टि मंच पर पहले बहुत प्योर गोल्ड रूप में आई। प्रकृति सतो प्रधान थी, आत्मा की स्टेज भी सातों गुणों से संपन्न और भरपूर थी, सतोगुणी थी, लेकिन धीरे धीरे इस शरीर रूपी बाजे के साथ पार्ट बजाने शुरू किया, एक शरीर लिया, दूसरा लिया, तीसरा लिया, और संग का रंग तो लगता ही है, तो आत्मा को इस शरीर का संग लगने लगा, रंग भी लग गया, और रंग लगते लगते कलाएं, प्योरिटी की वो कलाएं जो 16 कलाएं संपूर्ण आत्मा थी, वो धीरे धीरे गिरते गिरते उसके अंदर थोड़ी थोड़ी मैल अशुद्धि आने लगी बॉडी कॉन्शियस की, और उस अशुद्धि के कारण काम वासना बढ़ी, क्रोध की जागृति होने लगी, गुस्सा आने लगा, आसक्तियां बढ़ती गईं, लोभ वृत्ति, फिर संबंध बढ़े तो उसमें मोह रगें जुड़ती गई, और जो हम कर्म करने लगे उस कर्म का थोड़ा सा दिखावा, नशा, अहंकार के रूप में, अभिमान के रूप में आया, और इन पांचों विकारों की धीरे 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 वृद्धि हुई, और आज इस कलयुग के अंदर हम सब किस स्टेज तक पहुंच गए। बाबा कहते जब एकदम आत्मा तमो प्रधान बन जाती, प्रधानता उसकी तमो की हो जाती है, तब बाबा आते हैं। अब उस तमो प्रधानता को एकदम सतो प्रधान बना देना, चेंज करना, उस सभी आसुरी लक्षणों को, विकारों की जड़ों को भस्म करना, उसके लिए तपस्या की जरूरत है। साधारण याद से, मुरली सुन लेने से, क्लासेस सुन लेने से वो शुद्धता नहीं आती। ठीक है, जैसे एक मूर्ति छेनी हथौड़ियों से पूजनीय बनती है, एक पत्थर को तराशते तराशते उसको एक मूर्ति का रूप दे देते हैं और वो पूजनीय बन जाती है, मंदिर लायक बन जाती है। दूसरा एक पत्थर पानी के साथ साथ टकराते टकराते बिना छेनी हथौड़ी के भी पावन बनता है, गोल हो जाता है और उसकी भी पूजा होने लगती है। विधियां तो हैं दोनों ही, केवल एक ही नहीं है, लेकिन दोनों एक में काफी समय लगता है, बहुत रगड़ खानी पड़ती है, और दूसरी में थोड़े से छेनी हथौड़ी से भी पावन बन के वो शुद्ध हो करके और वो पूजनीय बन जाती है। तो बाबा भी हम सबको परम पूज्य, परम पवित्र बनाना चाहते हैं, इसलिए कहते हैं बच्चे अगर हो सकता है तो, समय निकलता है, समय है तो गहन तपस्या करो, और ऐसी तपस्या हो जिससे अपने आप को हम गहराई से महसूस कर सकें। तो एकांत में एकाग्र होकर के अपने मन की गतियों को देखो, कोई भी संकल्प विकल्प अगर चलते हैं, बार बार मन भटकता है तो कहाँ कहाँ जाता है, पहले इसको चेक करो, और हो सके तो एकांत में जब बैठो, यहां से उठो तो अपनी डायरी उठाओ और अपने अंदर झांक के देखो, मेरे अंदर अभी तक कौन कौन से अशुद्ध संस्कार रहे हुए हैं, छिपे हुए हैं। बताना की जरूरत नहीं है किसी को, वातावरण में बताने की, फैलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मेरे अंदर कोई ऐसी वासनाएं हैं, देखने से ही कामनाएं उत्पन्न होती हैं, इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, दृष्टि वृत्ति में चंचलता आती है, इंद्रियों में उत्तेजना आती है, सूक्ष्म वासनाएं हैं, या ऐसी कोई आदत जो देखने से ही चिड़चिड़ापन आता है, मुख से कटु वचन निकल जाते हैं, व्यक्ति अच्छा नहीं लगता है, उसे नफरत पैदा हो जाती है, घृणा होती है, बात न करें, देखें न, वो संस्कार अंदर हैं, बदला लेने की भावनाएं हैं, ईर्ष्या की भावनाएं हैं, आसक्तियां हैं, बहुत सारे सूक्ष्म बाल बच्चे बाबा कहते हैं विकारों के बहुत हैं, और वो कहीं न कहीं से छिपे हुए हैं। अच्छे संग में हम रहते हैं, अच्छे वातावरण में रहते हैं, अच्छा भोजन करते हैं, परहेज से चलते हैं, पता नहीं चलता, लेकिन जब कोई ऐसा अवसर आता है, जैसे बीज अगर आपके पास है और बीज को आपने किसी एक मटके के अंदर कोई स्थान पर छिपा दिया है, रखा हुआ है, तो उसमें इतनी जल्दी अंकुर नहीं निकलता क्योंकि वो दबा हुआ रखा हुआ है, लेकिन जब उसको बाहर निकाला जाता है, कहीं धूप हवा पानी मिट्टी का संग मिल जाता है, तो उसी बीज से जो बिना अंकुरित था उसमें कुछ न कुछ अंकुर निकल आते हैं। बाबा भी कहता है कि मेरे बच्चों ने अपने पुराने संस्कारों को दबाया हुआ तो है, बड़े शांत हैं, बड़े सरल हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, योगी लगते हैं, लेकिन जब कोई ऐसी परिस्थिति आती है, जब कोई ऐसी घटना घटती है, जब कोई ऐसा वातावरण मिलता है, तो वो छिपा हुआ विकारी बीज वो कहीं न कहीं अंकुरित हो जाता है, उसके द्वारा कुछ न कुछ गलत कर्म होने लगते हैं, उत्तेजनाएं, आवेग, आवेश, आलस्य, बहुत सारे विकार उसमें प्रवेश हो जाते हैं। इसलिए एकांत में बैठ करके, एकांतवासी बन करके पहले अपनी अशुद्धताओं को चेक करो, बहुत सूक्ष्म जा करके मेरे अंदर क्या ऐसा है जिसको मुझे भस्म करना ही है, जलाना ही है, क्योंकि जहां पर महसूसता की शक्ति होती है वहां ही परिवर्तन दिखाई देता है। कईयों को तो पता ही नहीं चलता मेरे अंदर भी ये है, अगर कोई कह देगा तो बड़ा फीलिंग आ जाएगी कि मेरे को ऐसा क्यों कहते हैं, मेरी दृष्टि वृत्ति कोई अशुद्ध है क्या, मेरे अंदर क्रोध थोड़ी है, मैं तो बहुत सबके साथ अच्छा चलता हूं, मिलनसार हूं। लेकिन सूक्ष्म में कुछ न कुछ ईर्ष्या द्वेष घृणा नफरत विकारों की कोई जड़ जो अंदर सूक्ष्म में है उसको महसूस करके परिवर्तन किया जा सकता है। खुद को महसूस करना है, बाबा तो महसूस कराने के लिए मुरलियां चलाता है, मुरलियां हम सुनते हैं, कई बार लगता है बाबा ये जो कहते हैं है तो सही, मेरे अंदर अभी तक भी है, मुझे इसको चेंज करना है। और जिस दिन आपने संकल्प पक्का कर लिया कि मुझे इसको चेंज करना है, उस दिन बाबा की शक्तियां आपके साथ आ जाएंगी, काम करने लगेंगी। जिस दिन जब तक पता ही नहीं चलता है, छिपे हुए हैं, चल रहे हैं, ठीक है, सब चलते हैं, इनके अंदर भी है, इनके अंदर भी है, बहुतों को देखते हैं, कहते अरे अभी बना कौन है, बन जाएंगे समय आएगा। तो बाबा कई बार तीन बातें हमें सुनाता है कि ब्राह्मणों को ये तीन बाजियां बहुत आती। एक बाबा कहता है अलबेलापन बहुत सूक्ष्म में है, बन जाएंगे, हो जाएगा, अभी तो समय पड़ा है, कौन बना है। और कई बार कह देते हैं बाबा की मुरली से लेकर के ही पास तो आठ ही होने वाले हैं, सबको तो थोड़ा बहुत सजा खानी पड़ेगी, अब आठ में हम कहां आने वाले हैं। बाबा की मुरली की बात को ही लेकर के बाबा कहता मेरे को ही समझाने लगते हैं। तो अलबेलापन ब्राह्मणों के अंदर कहीं न कहीं अगर है तो पुरुषार्थहीन बना देता है। दूसरा एक बहुत सूक्ष्म विकार है, वो आपने नोट किया होगा, योग में बैठते ही वो सताने लगता है, या मुरली सुनते भी झुटके आलस्य के रूप में वार करते हैं, और आलस्य ब्राह्मणों का महान शत्रु है। आप चेक करना सुस्ती आलस्य अलबेलापन क्यों आता है, कारण क्या है। या तो हमारा अपने खान पान पर ध्यान नहीं है, समय वे समय हम खाते हैं, या समय पर नींद नहीं करते, निद्रा जीत का अर्थ शायद ये बना लिया है कि नींद नहीं करनी है। कोई कोई को टाइम नहीं मिलता है, दो घंटे तीन घंटे में अपने 24 घंटे की दिनचर्या को तीन घंटे के आराम से पूरा करते हैं, कहते हैं ठीक है, बाबा कहता ना निद्रा जीत बनो, 11 बजे सोए और 2 बजे उठ के योग में बैठ गए, शरीर तो साथ नहीं देगा ना इतना, उसको तो 5-6 घंटा नींद चाहिए ना, 8 घंटा तो ठीक है कहीं नहीं मिलता है, 8 घंटे में कई चीजें हैं, लेकिन कम से कम शरीर को 5-6 घंटा नींद तो चाहिए। फिर भी इतनी नींद होने के बाद भी कईयों को नींद अच्छी आ जाती, 6-7 घंटा सो लेते हैं, लेकिन फिर भी क्लास में बैठते हैं, योग में बैठते हैं, कहीं पुरुषार्थ का समय होता है उसमें सुस्ती जरूर आती है। कोई शारीरिक प्रॉब्लम होती है वो अलग बात है, कोई शुगर है, कोई बीपी हाई है, कोई कारण है, वो कोई कोई को होता है, लेकिन अगर वो भी अलर्ट हो जाए और कुछ अच्छा चिंतन करे, कोई अच्छे विचारों में मन को रमण कर दे, मगन कर दे, लौलीन हो जाए, तो आलस्य को जीता जा सकता है, सुस्ती भाग जाती है। लेकिन जहां हम वो शांत स्वरूप स्थिति में बैठने का प्रयास करते हैं, मन के संकल्पों को एकदम शांत करने लगते हैं, तो शांत होते 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 कहां चले जाते हैं। इसलिए आलस्य हमारे तपस्या में बहुत बड़ा विघ्न डालता है। इसलिए आहार और निद्रा इन दोनों पर बहुत ध्यान तपस्या के लिए चाहिए। अधिक भोजन भी खाएंगे तो भी बहुत सुस्ती आएगी, और नहीं खाएंगे तो शरीर साथ नहीं देगा, उसका भी संतुलन चाहिए। नींद अधिक करेंगे तो और आलस्य ज्यादा आएगा और विकार सताएंगे, और अगर बिल्कुल नहीं करेंगे तो भी शरीर साथ नहीं देगा। इसलिए दोनों का संतुलन भगवान कहते हैं, गीता में भी कहा है निद्रा और आहार का बहुत अच्छा संतुलन चाहिए। तो गहन तपस्या के लिए एक अलबेलापन, एक आलस्य और दूसरा तीसरा बहाना। बहाना तो बहुत है, क्या करूं, टाइम नहीं मिलता है, जरूरी काम होते हैं, बहाने इतने अच्छे अच्छे बनाते हैं तो कोई उसका तर्क से काट नहीं सकता। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहता है बच्चे समय बड़ा अनमोल है, ये अनमोल समय ऐसे ही हाथ से चला गया, फिर नहीं आने वाला है। कोई भी प्रकार का पढ़ाई में, योग में, सेवाओं में, अपनी उन्नति में बहाने जहां पर भी आए उनको डाइवर्स करो, हटाओ उनको, कि बहाना नहीं करना है, कुछ भी हो जाए मुझे करना है। तपस्या का एक बहुत सुंदर अर्थ बाबा हम बच्चों को बताते हैं, तपस्या माना दृढ़ता संपन्न संकल्प। तपस्या माना ऐसे नहीं आके बैठ जाओ, लेकिन जो संकल्प करो उसमें दृढ़ता इतनी हो, जो कहते हैं प्राण जाए पर वचन न जाए, संकल्प जो कर लो उससे हटना नहीं है, तो ऐसी तपस्वी जीवन बन जाए। जीवन है, एक दो घंटे की तपस्या नहीं है। कोई हम बैठ गए एक दो घंटा हम तपस्या कर रहे हैं, बाबा कहता वो तो तुमने हठ योग हठ क्रियाओं में भक्ति के अंदर बहुत किया होगा, उस तपस्या की अभी जरूरत नहीं है। लेकिन चलते फिरते खाते पीते कर्म करते, बहुत सुंदर आसन बाबा ने दिया है, उस आसन पर बैठ जाओ, और वो आसन है ये भ्रकुटी आसन, ये गुफा है अंतर्मुक्ता की। तपस्या अगर करनी है तो इसके लिए कोई एक स्थान, ये स्थूल में कोई स्थान पर बैठ करके, वो अच्छा स्थान कभी मिलता है तो बैठ के अच्छी तपस्या करो, लेकिन नहीं मिलता है, कोई बहुत कारोबार है आप बिजी रखते हैं, बाबा उसके लिए भी मना नहीं करता, कहता करो सब काम करो, लेकिन करते हुए एक अंतर्मुक्ता की गुफा में भ्रकुटी के आसन पर बैठ करके, मैं आत्मा न्यारी हूं इस देह से, इस देह रूपी वस्त्र को मैंने धारण किया है, ये चिंतन करो, स्मृति में आओ और स्वरूप में स्थित होकर के फिर कर्म कराओ कर्मेंद्रियों से। मैं आत्मा मालिक बन करके इन कर्मेंद्रियों से कर्म करा रही हूं, मैं मालिक अलग हूं ये अलग है। दो बाबा हमें भान देते हैं, दो स्मृतियां दिलाते हैं, एक बाबा मेरा करावनहार है और मैं आत्मा करनहार हूं। आप इस समय ये प्रैक्टिकल अनुभव कर सकते हो, किसी भी व्यवहारिक जीवन में कार्य व्यवहार में ये अनुभव करना, इस समय जिसका सच्चा संबंध बाबा के साथ है, बाबा उससे सब कुछ अच्छे से अच्छा करा रहा है, वो कर रहा है नहीं वो करा रहा है। कभी ये अभिमान नहीं आता है कि मैं कर रहा हूं, मुझे तो कभी लगता है कि सचमुच ये सब बाबा करा रहा है, उसकी लीला चल रही है। दादी बार बार कहती है, कभी भी दादी के पास हम बैठते हैं, जानकी दादी के पास, उनके मुख से एक ही शब्द निकलता, प्रभु लीला चल रही है, प्रभु लीला चल रही है, भगवान करा रहा है, मैं क्या कर रही हूं, आप क्या कर रहे हो, कोई कुछ नहीं कर रहा है, वो कराने वाला अपने बच्चों से नई दुनिया बना रहा है, स्वर्ग की स्थापना करा रहा है, और कहीं न कहीं से उसको किसी को भी निमित्त बना सकता है, हम बन जाएंगे तुम्हारा भाग्य बन जाएंगे। तो एक भान ये रहता है कि करावनहार बाबा है और मैं आत्मा करनहार कर रही हूं, और दूसरा भान ये रहता है कि मैं आत्मा करावनहार बनकर इन कर्म इंद्रियों से कर्म करा रही हूं, ये करनहार है और मैं करावनहार हूं। इससे देह और देही का एक अलग भान आने लगता है, शरीर और आत्मा अलग महसूस होने लगती है, और हमारी तपस्या है ही वास्तव में कर्म इंद्रिय जीत बनने की। जो आत्मा कर्म इंद्रिय जीत है वो तपस्वी है, कोई भी कर्म इंद्रिय मुझे धोखा न दे। बहुत धोखा हमने खाए, कभी आंख ने धोखा दिया, कभी मुख ने धोखा दिया, कभी कानों ने धोखा दिया, कभी हाथों ने दिया, कभी पैरों ने दिया, कहीं गलत रास्ते पर चले गए। अभी चेक करो, कोई भी कर्म इंद्रिय, चाहे सूक्ष्म शक्तियां, आत्मा की सूक्ष्म शक्तियां बहुत मैली हो गई, कहते सबसे पहले मन मैला हो गया, मन मैला तो सब कुछ मैला। आप कितने भी पर्यावरण के साधन बना लो, आज पर्यावरण दिवस है ना, 5 जून है पर्यावरण दिन, चारों तरफ से मना रहे हैं भाई, जल अशुद्ध नहीं होना चाहिए, वायु अशुद्ध नहीं होनी चाहिए, मैला पृथ्वी पर मैल नहीं बढ़ना चाहिए, गंदगी नहीं बढ़नी चाहिए, लेकिन इसका कंट्रोल तो अभी इनके हाथ में नहीं रहा, ये तो अनकंट्रोल है। पर्यावरण ठीक हो सकता है, इतनी आबादी बढ़ रही है, इतने सारे साधन, इतने कल कारखानाएं, इतनी एसी बढ़ रही हैं, इतनी सारी गाड़ियां बढ़ती जा रही हैं, इतने व्यक्ति बढ़ते जा रहे हैं, तो उनके साधन सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं, और जितने साधन सुविधाएं बढ़ेंगी उतना कार्बन बढ़ जाएगा, और कार्बन बढ़ेगा तो ओजोन परत फटेगी, और क्या होगा? इसको सुधारने वाला, इस पर्यावरण को सुधारने वाला कौन? भगवान ही सुधार सकता है, इंसान नहीं। अब उसके हाथ में ही चला गया है, तो भले ही हम लोग प्रयास करें, प्रोग्राम करें, लेक्चर दे दें कि जल शुद्ध करो, वायु शुद्ध करो, लेकिन व्यक्ति के हाथ से बात निकल चुकी है। इसलिए परमात्मा हम सबको कहते हैं, तुम आत्म शुद्धि करो, सब शुद्ध हो जाएगा। हमारी शुद्धि है आत्मा की शुद्धि, और आत्मा जिस दिन पवित्र शुद्ध बन गई, उस दिन सब समस्याएं हल हो जाएंगी। इसलिए बाबा ने बहुत अच्छा आत्म शुद्धि का साधन बनाया है कि मन की अस्वच्छता को चेक करो। मन अस्वच्छ है तो चंचल है, भटक रहा है इधर उधर से, कोई को तनाव है, कोई को कैसा डिप्रेशन, कोई को कैसा डिप्रेशन, छोटी छोटी बातें भी वो सहन नहीं कर पाता, छोटी कोई प्रॉब्लम आ जाती है उसमें उलझ जाता है, क्या क्यों कैसे, ऐसे हो गया वैसे हो गया। आप लोगों के आगे प्रॉब्लम तो आती होंगी ना, कलयुग में नहीं आती है, सबके आगे आती है। ऐसा कौन है जो कहेगा मेरे आगे कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती है? कोई भाई ऐसा कोई बैठा हो तो हाथ उठाओ जिसके आगे कोई प्रॉब्लम ना हो, बिल्कुल एकदम फरिश्ता बना हुआ हो। कलयुग के अंदर है, कोई को बीमारी की प्रॉब्लम है, देह की अपनी प्रॉब्लम है, कोई को संस्कारों की है, कोई को संबंधों की है, कोई को धन की है, कोई को समाज की है, कोई को प्रकृति की है, कोई को सरकार की है, कितनी सारी प्रॉब्लम्स है कलयुग में। और इन प्रॉब्लम्स के बीच में मन कितना स्थिर और एकाग्र रहता है, कितना उस पर हमारी जीत है, उसको चेक करना। प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, कोई कहे ये पहाड़ आ गया इसको मैं तोड़ करके पार हो जाऊं, बाबा कहता तोड़ोगे तो थक जाओगे, ये तो हटने वाला नहीं, तो और बड़ा बड़े वाला बड़ा होने वाला है, तुमको अपना रास्ता लेना पड़ेगा। इसलिए वो पहाड़ हट जाएगा, कलयुग की इतनी समस्याएं दूर हो जाएंगी, तब मैं सुखी हो जाऊंगा, अरे एक खत्म होगा दूसरा खड़ा हो जाएगा। इसलिए हमको अपने मन की स्थिति को बहुत शक्तिशाली बनाना है, स्थिर और एकाग्र करना है, बाबा की शक्तियां इसके ऊपर डालनी है, सर्वशक्तिमान बाबा से कनेक्शन जोड़ करके रखना है, जिसे आने वाली प्रॉब्लम्स ऐसे लगे तो खेल और खिलौना है, कुछ नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ध्यान रखना, कोई भी बात बड़ी तब होती है जब सोचने लगते हैं या वर्णन कर देते हैं। सोचने और वर्णन करने से छोटी सी बात बहुत बड़ा रूप ले लेती है। नथिंग न्यू, सोचना बंद कर दो ठीक हो जाएगा सब, बाबा हमारा साथी है, क्या बड़ी बात है। जिसके साथ स्वयं हजार भुजा वाला बाबा सर्वशक्तिमान, उसके साथ कोई भी बात घटेगी तो पार हो जाएगी। तो बाबा को साथी बनाना ही वास्तव में सच्ची तपस्या है, सदा वो साथ का अनुभव कराए। एक बाबा पहले हर परिस्थिति में, पहले संकल्प में बाबा याद आए, दूसरा कोई याद आएगा तो बाबा किनारा कर लेगा, बड़ा चतुर है, भोला तो है लेकिन चतुर भी बहुत है। अगर किसी देहधारी की याद आ गई कि वो फलाना व्यक्ति होता तो मदद कर देता, ये ऐसा बात हो गई, ऐसा केस हो गया, ऐसी घटना है, फलाना भाई होता ना तो बहुत मदद मिल जाती है, तो बाबा भी मुस्कराता है वतन से, देखा किसको याद करता है। मदद करने वाला जो सर्वशक्तिमान हो पीछे याद आता है, अगर उसको याद कर ले हो सकता है वो किसी के द्वारा करा दे, कराएगा तो वही, लेकिन उसकी बजाय हम किसी देहधारी को याद करने लगते हैं तो बुद्धि भटक जाती। इसलिए बाबा हमको तपस्या का एक बहुत और अच्छा अर्थ बताता है, तपस्या माना एक व्रता, एक बल एक भरोसा, एक बाबा दूसरा न कोई, जिसके संकल्पों में ये है कि मेरा तो एक, बस उसके लिए वो तपस्या शुरू है, उसके सब अशुद्धियां अपने आप समाप्त हो जाएंगी। आत्माएं अपनी कमजोरियों को इतनी जल्दी समाप्त नहीं कर सकती, मेरे अनुभव में तो ऐसा लगता है कि अगर हम अपनी कमजोरियों को समाप्त करने की मेहनत करेंगे तो थक जाएंगे, लेकिन बाबा को अगर साथी बना लेते हैं, सर्व समर्थ को साथ रख लेते हैं, तो कमजोरियां ऐसे लगती हैं अरे तो सब अपने आप बाबा ठीक कर देगा, बाबा बैठा है, सर्वसमर्थ सर्वशक्तिमान बाबा है उसके साथ मेरा कनेक्शन है, ये कमजोरियां क्या बड़ी बात है, खत्म हो जाएंगे, ये संस्कार है खत्म हो जाएंगे। संस्कारों को सोच सोच करके ज्यादा दुखी नहीं होना, निराश नहीं होना, क्योंकि इस समय कलयुग के अंदर दो बीमारियां बहुत फास्ट गति से फैलती हैं। एक हार्ट की बीमारी है ना, छोटी छोटी बात हो गई, टेंशन हुआ, गुस्सा आया, टेंशन हुआ, दिल को दर्द पड़ा और दिल की बीमारी शुरू हो गई, कोई ना कोई ब्लॉकेज हो गई। हमारे पास कैड के प्रोग्राम यहां चलते हैं ना शांतिवन में, तो उनसे लिखवाते हैं तुमको ये हार्ट की बीमारी क्यों हुई, तो जब पहला प्रश्न ये पूछा हम गए क्लास में, तो ये तुमको हार्ट, हमने कहा डॉक्टर साहब इनको क्या पता कैसे हुई, आप इनसे पूछ रहे हो, आप बताओ ना क्यों हुई, कहते ना ये खुद बताएंगे हार्ट बीमारी क्यों हुई। जब वो कोई दिल को बहुत धक्का लगता है ना कोई कारण से, कोई नुकसान हो जाता है, कोई कहना नहीं मानता है, कहीं संबंध विच्छेद हो जाते हैं, जिससे प्यार होता है उनसे धोखा मिल जाता है, फट से दिल में दर्द शुरू हो जाता है और जो उमंग उत्साह की आर्टरी, खून की आर्टरी वो ब्लॉक हो जाती, हार्ट अटैक आ जाते हैं, बीमारियां हार्ट की हो जाती। तो यहां पर भी इस ब्राह्मण जीवन में भी अगर कोई भी निराशा आ गई, उदासी आ गई, कभी भी सोच लिया मैं तो कोई काम का ही नहीं, मेरे अंदर तो कुछ भी नहीं है, मैं तो सेवा भी नहीं कर सकती, मेरे तो पढ़े लिखे भी नहीं हूं, मेरे अंदर तो शरीर में भी इतनी शक्ति नहीं है, मेरी आयु भी इतनी बड़ी हो गई है, निराश हो गए, उदास हो गए, हताश हो गए, दिल शिकस्त हो गए, क्या होगा, कौन सी बीमारी है, ये हार्ट की बीमारी, दिल शिकस्त, कमजोर हो गया, उमंग उत्साह का जो ब्लड चलता था ना वो बंद हो गया, ब्लॉकेज हो गई, फिर पंप करना पड़ता है, सांस फूलती है फिर। इसलिए बाबा अपने बच्चों को कहता, बच्चे तुम बहुत बड़ी विशेष आत्माएं हो, महान आत्माएं हो, देव आत्माएं हो, नेगेटिविटी जो आई उसको खत्म करना है ना, वो खत्म हो जाएगी, इसलिए बहुत ऊंचे नशे और सम्मान में रहो कि मैं ये हूं और मुझे ये बनना है, ये नीचे वाली बातें खत्म हो जाए। तो बाबा को जब साथी बना लेंगे तो कभी भी निराश उदास नहीं होंगे। और दूसरी बीमारी है ना बहुत सूक्ष्म है, वो कैंसर की, बहुत फैल रही फास्ट गति से, प्रदूषण है, खान पान है, अशुद्धियां हैं, बहुत सारी बातें हैं। आत्मा के अंदर भी अगर किसी भी प्रकार की अशुद्धि है तो कैंसर अंदर अंदर ऐसा खाता है, गांठ बन जाती है और वो गांठ बड़ी खतरनाक होती है। जैसे उस बीमारी का इलाज कोई नहीं रहता और जब उस लास्ट स्टेज पर पहुंचते तो पता चलता, ऐसे ही अगर अहम और वहम की बीमारी अंदर आ गई तो बाबा कहता सब की कमाई चट हो जाती है, बहुत सारी जमा पूंजी, बहुत सारे पुण्य कर्म किए, सेवाएं की, तन लगाया, मन लगाया, धन लगाया, बहुत अच्छे सेवाधारी बाबा के बच्चे बन करके, यज्ञ स्नेही सहयोगी बन करके रहे, लेकिन थोड़ा सा भी मेरा नाम हो जाए, मुझे कोई पहचान ले, मैं इतना करता हूं, मेरी कोई कदर नहीं है, ये मैंपन सूक्ष्म अगर आ गया ना तो ये धीरे धीरे अंदर के सब खजाने खाली कर देता है, वो नहीं कैंसर जैसे लग जाता है, वो दीमक जैसा वो अंदर अंदर खोखला कर देता है, फिर अंत बहुत बुरी होती। और दूसरा इसके साथ साथ एक वहम है, अनुमान, शंका, संशय अपने प्रति भी कई बार उत्पन्न होता है, पता नहीं मैं, मुझे इस नजर से लोग क्यों देखते हैं, पता नहीं ये मेरे से ठीक बात क्यों नहीं करते हैं, कुछ हुआ तो नहीं, अंदर अंदर सोच सोच करके घुटते रहते हैं, कभी आपस में बात करके हल्के हो जाएं, लाइट हो जाएं, नहीं, लेकिन अंदर अंदर अपने प्रति, परिवार के प्रति, बड़ों के प्रति कुछ न कुछ ऐसा सोच लेते जो वहम की बीमारी अंदर खाते खाते उसकी खुशी गायब, उसका उमंग उत्साह खत्म, धीरे धीरे वो भी घुन लग जाता, कैंसर हो जाता। इसलिए बहुत ध्यान रखना, कभी भी ऐसी अशुद्धियां अंदर हों, सूक्ष्म हैं, उन अशुद्धियों को समाप्त करना है, उनको चेक करना है, क्यों मैं किसी पर, अपने पर भी क्यों वहम करूं, पता नहीं मैं देवता बना था नहीं, कई ऐसे सोच लेते ना, बाबा तो कहता है लेकिन मेरे अंदर वो लक्षण तो दिखाई नहीं देते, वो लक्षण कहां से आएंगे, अब बाबा ने अपना बच्चा बनाया है, अपनी गोद दी है, पालना दे रहा है, पढ़ा रहा है, मार्ग बता रहा है, आप चलो तो कम से कम बन जाओगे, और कोई बनेगा आके आके, आपको ही बनना है। तो जब बाबा ने हमारे में उम्मीदें रखी है तो हम अपने आप को ना उम्मीदवार क्यों बनाए, भगवान की उम्मीदों को पहचानो। उसने उम्मीद रखी, उसने अपना बच्चा बनाया, उसकी नजर कहां पड़ी, बंगाल में इतने लोग हैं आपके ऊपर ही क्यों पड़ी, सोचा है कभी? आपके ऊपर पड़ी तो जरूर आप विशेष आत्माएं हैं, लेकिन अपनी विशेषताओं का अभिमान ना है, वो प्रभु देन है। बहुत निर्माणता से नम्रचित बनकर के बाबा आपने जो दिया बहुत कुछ दिया है, अपने आप को बहुत संपन्न स्वरूप में अनुभव करके अपने ऊंचे सम्मान में रहो और बाबा की ऐसी शक्तियां अपने ऊपर लो सकास के रूप में। मैं आपको 5 आसन देता हूं, 5 आसन है, स्थान है जिन पर बैठ करके तपस्या करना है। ये आसन सिर्फ नहीं, ये तो चाहिए, अगर हो सकता है तो इसके लिए जितना स्वच्छ स्थान मिलता है उसमें शरीर भी स्थिर हो, दिल की भावनाएं भी स्थिर हो, बुद्धि भी स्थिर हो, मन भी स्थिर हो। जितना स्थिरता और एकाग्रता होगी उतना आपका योग बहुत अच्छा होगा, हिलो डुलो बार बार नहीं, ऐसे दृष्टि जा रही, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, जरा भी कोई ऐसे क्रॉस कर जाए, उठ जाए तो बार बार संकल्प चलने नहीं, क्यों उठा, क्या हुआ। इसमें बहुत स्थिर और एकाग्रता चाहिए, मन भी स्थिर, तन भी स्थिर, बुद्धि भी स्थिर, हमारे दिल की भावनाएं भी स्थिर एकाग्र है, तो तपस्या अपने आप शुरू हो जाती है। तो सबसे पहला आसन है हमारा ये अकाल तख्त, भ्रकुटी तख्त, बैठो इस पर और इससे देह से डिटैच होकर के अपने स्वस्वरूप को देखो, स्वधर्म में स्थित हो जाओ, स्वधर्म में स्थित हो जाओ। देह का धर्म याद ना है, मैं स्त्री पुरुष हिंदू मुस्लिम कुछ भी हो, बाबा वो धर्म को भुलाता है, भूलो इसको मारो, मेरा स्वधर्म शांति है, प्यार है, पवित्रता है। उस स्वधर्म में स्थित होकर अपने स्वस्वरूप को देखो और इस देह रूपी कुटिया से बाहर चमकता हुआ सितारा अनुभव करो। दूसरा आसन है कर्म के बीच में, कर्म क्षेत्र पर हरेक के साथ पार्ट बजाते हुए बहुत साक्षीपन की स्थिति का आसन, साक्षीपन की स्थिति। अगर साक्षीपन की स्थिति नहीं होगी तो ये क्यों कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा क्यों होता, अनेक प्रश्नों में आत्मा उलझती रहती। जब हम सब जानते हैं कि हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, एक का पार्ट दूसरे से नहीं मिलेगा, ज्ञान सबके पास है, कोर्स भी किया है और कराते भी हैं, लेकिन जब उसका पार्ट मेरे जैसा नहीं है तो मैं उसके पार्ट को इंटरफियर करके अपने आप को डिस्टर्ब क्यों कर रहा हूं, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। माताएं क्या सोचती हैं, ये मेरा बेटा है ना, मैंने इसको जन्म दिया, इसको पढ़ाया, बड़ा किया, पालना की, संस्कार डाले अच्छे, ये बड़ा होकर के ऐसा नटखट क्यों हो गया, इधर क्यों चला गया, उधर क्यों चला गया, कहना क्यों नहीं मानता, मेरा अधिकार है, गुस्सा आता है, जोश आता है, अधिकार रखते हैं, आर्डर करते हैं और नहीं मानता तो एकदम टेंशन में चले जाते हैं, देखो मैंने क्या मेरी सारी लाइफ इसके पीछे लगा दी, ये सुधरने वाला ही नहीं, और उसके ऊपर नेगेटिव सोचने लगते, अपनी स्थिति बिगाड़ लेते। जब जानते हो हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, आपने अपना पार्ट पूरा किया, उसका पार्ट जो है आप गाइड करो, सही रास्ता दिखाओ, लेकिन डिस्टर्ब क्यों हो रहे हो, कोई चेंज कर सकता उसके पार्ट को, जो उसका पार्ट है वो जाएगा। लेकिन अगर हम थोड़ी थोड़ी बात में अधिकार रख करके आर्डर चलाते हैं तो डिस्टर्ब होते हैं, गुस्सा करते हैं, घर का वातावरण अशांत कर देते हैं, और साक्षीपन की स्थिति है, अरे इनका अपना पार्ट है, मेरा अपना पार्ट है, मेरा पार्ट अच्छे से अच्छा बजाया और इसका जो पार्ट है बजाएगा। यह है साक्षीपन की स्थिति का आसन। और तीसरा, बाबा अपने बच्चों को नॉलेज फुल बनाता है, फुल नॉलेज, वृक्ष की पूरी नॉलेज। इसलिए बाबा ने हम सबको कल्प वृक्ष की जड़ों में बिठाया है, देखा है कल्प वृक्ष का तना, ब्रह्मा बाबा, मातेश्वरी, कामधेनुमा, कपल मुनि बाप और उनके बच्चे साथ में बैठ के तपस्या करते हैं। नॉलेज फुल स्टेज है कि इस कल्प वृक्ष की जड़ में हम सब बैठे हैं, हम पूर्वज आत्माएं हैं। बहुत ऊंचे सम्मान में रहो, हम पूर्वज हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है, शिव बाबा सिर्फ गॉड फादर है। ब्रह्मा बाबा ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है, माना जितने धर्म की शाखाएं निकली हैं, विचार करना। पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म तना रहा, फिर इब्राहिम आया, बुद्ध आया, क्राइस्ट आया, शंकराचार्य आया, अनेक धर्म निकले, लेकिन शाखा से शाखा नहीं निकली, तने से निकली सब। ये वृक्ष की बहुत बड़ी विशेषता है। और उस सब का आदि पिता हमारा बाबा और उसके हम सब बच्चे पूर्वज। कोई धर्म अलग नहीं है, जो हमारे धर्म भेद हो रहे हैं उसका कारण हम उनको अलग समझ रहे हैं। लेकिन जब एक ही तने की सब रचना है, बीज एक है, तना एक है, उसकी वैरायटी है, तो उस वैरायटी ज्ञान को इमर्ज करके इनको सकास दो, शांति की, प्यार की, सुख की, आनंद की, बैठ जाओ बीज बन करके। और जैसे बीज से शक्ति मिलती है पूरे वृक्ष को, ऐसे मैं बाबा के साथ मास्टर बीज रूप कल्प वृक्ष के तने में बैठी हुई जड़ें, पूर्वज आत्माएं पूरे वृक्ष को लाइट देती हैं। बहुत अच्छा आसन है, योग करना ना जब शाम के समय, ऐसे 15 मिनट कम से कम एक ही स्थिति में बैठ करके पूरे वृक्ष को इमर्ज करो। कितना सुंदर वृक्ष है, कितनी वैरायटी है, और सारी वृक्ष की अंत तक के पत्ते को मुझ आत्मा के द्वारा शक्ति मिल रही है। अभ्यास करना, बहुत मजा आएगा। चौथा, बाबा अपने बच्चों को मूल वतन की स्टेज पर, ऊंची स्टेज पर स्थित करता है। तपस्या करने के लिए बाबा कहता, बच्चे आ जाओ जहां पर कोई भी नेगेटिविटी नहीं है, जहां कोई इम्प्योर आत्मा का वाइब्रेशन नहीं है, उस मूल वतन की ऊंची स्टेज पर बैठ करके तुम ऊपर से पूरे विश्व को सकास दो, लाइट दो, माइट दो, शक्तियां दो, उन्हें पावन बनाओ। तपस्या के लिए उस आसन पर, ऊंची स्थिति पर बाबा के साथ बैठ जाओ, ज्ञान सूर्य के साथ बैठ करके उसकी लाइट मेरे ऊपर आ रही है और मेरे द्वारा सारे ग्लोब पर जा रही है, अनुभव करो। मूल वतन की स्टेज है वो। और पांचवी स्टेज बाबा अपने बच्चों कहता है, फरिश्ता स्थिति में डबल लाइट स्वरूप में ब्रह्मा बाबा के साथ अव्यक्त वतन में आ जाओ। बुद्धि बल से जाना है, शरीर से या आत्मा कोई चली नहीं जाएगी, लेकिन बुद्धि बल से वतन के नजारे को इमर्ज करो। बाबा का एक शब्द बताता हूं, कराची का शब्द है, चंद्र लोक की चांदनी और सूर्य लोक का तेज। सूर्य लोक बाबा कहता था परम धाम को, और चंद्र लोक कहता था सूक्ष्म वतन को। चांदनी इतनी शीतलता है, इतनी गहन रोशनी है, बहुत शीतल रोशनी चांद की, संदेशियों ने अनुभव किया है, आप भी उसका अनुभव करके देखो। बैठो तो ऐसे लगे एक शीतल गोद में बाबा की छतरी के नीचे बैठ गए हों, तपस्या शुरू हो जाएगी। और ऐसी तपस्या अगर इन पांचों स्वरूपों से वैरायटी रूप में भिन्न भिन्न समय पर करो तो क्या होगा? सबसे बड़ा फायदा ये है कि आत्मा एकदम प्योर गोल्ड बन जाएगी, और रियल गोल्ड की निशानी वो मोल्ड कर लेगी, सहज मोल्ड हो जाएगी, वो परिस्थितियों में डगमग नहीं होगी, हिलेगी नहीं, और मन एकदम अशांत नहीं होगा। मन को अशांत करने वाली बातों की परहेज जरूर करना, परहेज होगी तो ये सहज हो जाए। कोई दवाई तब लगती है ना जब परहेज से चलते हैं। परहेज बाबा ने तो बताया ना कि कोई ऐसा संग नहीं करना, कोई ऐसा खान पान नहीं करना, ऐसा कोई दिखावा नहीं करना, ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं रखना है, कोई ऐसी चीजें जो हमारे मन को दूषित करने वाली है, प्रभावित करने वाली है। अगर बार बार उसकी तरफ हम भटक रहे हैं, जा रहे हैं, तो मेहनत लगेगी। और बाबा अभी संगम पर अपने बच्चों की मेहनत नहीं देखना चाहता है, कहता बच्चे बहुत मेहनत की है तुमने, आधा कल्प से मेहनत करते आए हो, अभी भी मेहनत करोगे क्या? मेहनत लगती है क्योंकि हम पूरा परहेज से नहीं चलते, जो आया देख लिया, जो आया खा लिया, जो आया बोल दिया, जो आया सुन लिया, इन्हीं की परहेज, और क्या परहेज है? और कोई चीज थी परहेज तो बाबा ने बताई नहीं, आराम से रहो, खाओ पियो मौज करो, लेकिन जो ऐसी बातें हैं जो आपके मन को अशुद्ध बनाने वाली हैं, उनकी परहेज करके अपने आप को शुद्ध बना लो। जितनी जितनी जिसने परहेज किया ना, उसकी आत्मा एकदम स्वच्छ बनती जाएगी। दो चीजें आपके जीवन में प्रैक्टिकल दिखाई देनी चाहिए, दिखाई देंगी, वो है एकदम हल्का पवन पूत, जो आज बाबा ने कहा ना पवन पूत की तरह एकदम फरिश्ता जैसे उड़ रहा है, कोई बोझ लेकर के नहीं बैठेगा। अगर बोझ होगा तो जरूर नींद आएगी, थकावट होगी, भारीपन लगेगा, कहां तक चल सकेंगे? इसलिए हम बाबा के बच्चे बने हैं तो बहुत हल्के, सब जवाबदारियां बाबा को दे दो। इसलिए एक अच्छा सा आसन बाबा ने एक और दिया है, देखा होगा योगियों का आसन कमल आसन, हम सब का आसन कमल आसन है। प्रवृत्ति को छोड़ा नहीं, कीचड़ पानी के बीच में है लेकिन न्यारा है, खिला हुआ है, हैं कमल आसनधारी सभी प्रवृत्ति वाले? कमल आसन, आसन पर कोई फूल के ऊपर बैठता नहीं है, कमल फूल के ऊपर बैठ सकते हो आप, उंगली भी लगोगे तो डूब जाएगा, लेकिन बाबा ने अपने बच्चों की स्थिति इतनी लाइट बनाई है, इतना हल्का बनाया है, जो हल्की स्थिति में रहता है माना वो कमल आसनधारी है। तो हर जवाबदारी जो बोझ आपके ऊपर है बाबा को सौंपो, लिखो, बाबा को दे आओ, बाबा आपके कमरे में हम रख के जाते, हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर बाबा को सब सौंप दोगे और हल्के हो जाओगे तो बैठोगे फट से योग लग जाएगा। और दूसरी निशानी एकदम प्रसन्न चित्त स्थिति, खुशनुमा स्थिति, खुशी कभी भी ब्राह्मण जीवन में गायब नहीं होनी चाहिए, कुछ भी हो, ये हमारे लिए खुराक भी है और खजाना भी है। खुशी की खुराक खाने वाला तंदुरुस्त भी रहता, मन दुरुस्त भी रहता। और बहुत सरल रीति से खुशी और हल्कापन योग का आधार बन जाता है। जब बैठो सिर्फ ऐसे नहीं, सिर्फ शांत स्वरूप होके बैठ गए तो मजा नहीं आएगा। हम तो कहते इतना वैरायटी बाबा ने हमको खजाना दिया है, एक जैसा योग क्यों करते हो जो थक जाओ, बोर हो जाओ? सात आत्मा के गुण हैं, आत्मा सातों गुणों से संपन्न बने उसके लिए एक गुण पर एक दिन विशेष अभ्यास करो। आज मैं शांत स्वरूप हूं तो दूसरे दिन प्रेम स्वरूप हूं, तीसरे दिन आनंद स्वरूप, चौथे दिन सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पवित्र स्वरूप। सात दिन में अगर एक एक गुण का अभ्यास करो, वैरायटी हो जाएगा। जहां वैरायटी और नवीनता है वहां सुस्ती नहीं रहती, थकावट नहीं होती, बोरिंग नहीं आती, एकदम ऐसे लगेगा। इसलिए हम योग में भी कहते हैं एक रस स्थिति के लिए, रस एक है, रस एक का ही लेना है, लेकिन वैरायटी रीति से योग करो। 15 मिनट, अगर 45 मिनट योग में बैठते ना सवेरे, बोर क्यों होते, थकावट क्यों लगती? अमृत वेला बहुत लोग हैं जो कंप्लेन करते हैं, नींद आ जाती है, थक जाते हैं, नींद योग नहीं लगता। कारण है वो एक जैसा योग करते हैं रोज रोज, रोज नवीनता नहीं करते, रोज नए नए संकल्प इमर्ज नहीं करते। हम कहते 15 मिनट तुम साकारी याद में बैठो बस, और कुछ नहीं सोचो, अपने भाग्य का चिंतन करो, संगम का चिंतन करो, भगवान मिला, उसका संग मिला, उसकी पढ़ाई मिली, उसकी पालना मिली, इतना अच्छा हमारा संगठन परिवार मिला, कितने भाग्यवान हम आत्मा, वाह मेरा भाग्य। जैसे आज बाबा गीत गा रहे थे, वाह बाबा वाह, वाह मेरा बाबा वाह, ऐसे अपने भाग्य की, कई बार ऐसे कहते ना, ऐसे ऐसे करो, वाह मेरा भाग्य, अपने आप नशा चढ़ जाएगा, खुशी में आ जाएंगे। 15 मिनट ऐसी स्थिति में बैठो, आपका योग कहां जाएगा, लगा हुआ है। फिर 15 मिनट एकदम लाइट होकर के बाबा के साथ वतन में रूरियान करो, फरिश्ता बन करके, बाबा मैं आपकी गोदी में हूं, आपका बहुत वरदानी हस्त मेरे मस्तक पर है, अव्यक्त वतन का अनुभव करो। लाइट होकर के बाबा की गोदी का अनुभव करो, स्नेह का अनुभव करो, उनकी शक्तियों का अनुभव करो, उनके सानिध्य का अनुभव करो। और फिर सूक्ष्म वतन में फरिश्ता ड्रेस पहन करके, लाइट होकर के बाबा को बोलो, बाबा हमको सैर कराओ विश्व की। और फिर उस ड्रेस को उतारो और बाबा के उस ज्योतिर्बिंदु अखंड ज्योति में अपने घर में चले जाओ और बाबा के साथ बीज बन करके बैठो और ऊपर की लाइट लेकर के पूरे ग्लोब को दो। अगर 15-15 मिनट करो साकारी आकारी निराकारी तो क्या स्थिति बन जाएगी, 45 मिनट ऐसे निकल जाएगा, आपको लगेगा नहीं मैं एक घंटा 45 मिनट योग किया। लेकिन एक जैसा बैठोगे वही संकल्प रोज वही एक गीत बजा दिया वही स्थिति में बैठे तो 5-10 दिन ठीक रहेगा, फिर वैसे का वैसा हो जाए। तपस्या के द्वारा हमको अपने संस्कारों का परिवर्तन करना है, आत्मा को शुद्ध बनाना है, योगी जीवन का अनुभव कराना है और साथ साथ पूरे ग्लोब को पूरे मनुष्य सृष्टि को पांचों तत्वों को शुद्ध और पावन बनाने के लिए शक्तिशाली सकाश देनी है। यह है तपस्या। ठीक है, सिर्फ अपने लिए नहीं हम कर रहे हैं। आप केवल 10 मिनट शांत स्वरूप होकर बैठेंगे ना तो चारों तरफ से शांति के प्रकंपन फैलने लगेंगे। आप सेवा करने के लिए जा नहीं रहे कहीं, आप सिर्फ बैठ गए शांत स्वरूप होकर के, अपने आप आपको लगेगा चारों तरफ से कोई करंट आ रही है। ऐसे ही सेवा की जाती है। कोई सेवा के लिए हमको उड़ के कहीं किसी ग्लोब पर चले गए, कोई वृक्ष पर चले गए, कोई शहर पर चले गए, इसकी ढील नहीं करो। बैठो एक स्थान पर लेकिन बाबा के साथ का अनुभव करके उस शक्तिशाली स्थिति से भिन्न भिन्न अनुभूतियां। ठीक है, तो ऐसी तपस्या करके आत्मा को एकदम बहुत प्योर सच्चा सोना बना करके यहां से जाना। ओके, ओम शांति।
धन्यवाद भाई साहब। गहन तपस्या क्या होती और आत्मशुद्धि कैसे करनी और किस आसन पर बैठ के करना है, तो सब आसन हम सभी ने नोट कर लिए, उसकी प्रैक्टिस हम यहाँ ही करेंगे तो ज्यादा बेटर है, ताकि वहां जाने के बाद ये गहन तपस्या हम भूलेंगे नहीं। इसीलिए फिर से माता जी का धन्यवाद है।